अब जैसे ये शंकराचार्य का टजोड़ रहने में जीव ही ब्रह्म है, जीव ही ब्रह्म है, जीव ही परमात्मा है, और पूजा क्रम पार्वती की, फिर पार्वती क्या होगी? इनसे पूछे कोई बोली आत्माओं तो दुनिया में बेकार है। और भी बहुत से सिरफरे ऐसे हैं, कुछ पंथ चल रहे हैं उनका, जीव ही ब्रह्म है, तू ही परमात्मा है, तू ही परमात्मा है, फिर पूजा किसकी करे टट्टू की, फिर किस लिए गुरु शिष्य बने बैठे हो जब तू ही भगवान है, तो जीव तो गधा भी है फिर वो भी भगवान है, इसका मतलब है। तो इनकी ना तो कोई आधार किसी वस्तु का, दुनिया को गुमराह करके काल के जाल में फंसा रहे। अब जितने भी कबीर पंथी हैं और ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, और ये कृपाल मिशन वाले, ये सारे एक कुएं का पानी है, राधा स्वामी वाले जितने भी, और ये ठेका ले रहे हैं सतलोक और सचखंड का, भगवान का, परमात्मा सतपुरुष का, और सतपुरुष को निराकार बताते हैं, कहते ऊपर तो प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, वहां जाकर के परमात्मा में आत्मा ऐसे मिल जाती है जैसे समुद्र में बूंद। बोले आदमियों ये तो ऐसा क्रम हो गया जैसे कोई समुद्र में डूब कर मर जा, तो ऐसी कौन शर्म दर्द करेगा, आपत कौन मोल लेगा उसमें जाकर, और वहां कोई भी कोई नहीं, फिर वहां हम के करेंगे जब भगवान नहीं है, हम उसकी तरफ में घूम रहे हैं, परमात्मा में ला उसके दर्शन कराएंगे। जैसे आज जन्म आपने पढ़ा था, श्वेत छतर शिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नु, सतलोक में परमात्मा विराजमान है। तो इस प्रकार परमेश्वर ने हम सभी की उत्पत्ति की, हम वहां ठाट से रहा करते थे, सदा बाहर वर्ग से, किसी चीज का अभाव नहीं, कहीं फुहारे चल रहे हैं, कहीं वर्षा हो रही है परमात्मा की, बहुत सुंदर मौसम रहता है, ना गर्मी है ना सर्दी है, और कोई काम नहीं, बने बनाए आहार त्यार मिलते हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, फलदार वृक्ष हैं, अमृत जैसे मीठे वो सभी जल है, नदियां बहती हैं दूधों की। तो हम वहां रहा करते थे, हम अपनी नालायकी के कारण इस काल के जाल में फंस गए। वो कैसे फंसे? कुछ दिनों के बाद इस काल भगवान ने, इस क्षर पुरुष ने, ये काल बाद में कहलाएगा, इसको अभी ये दास क्षर पुरुष कहेगा, क्षर पुरुष ज्योति निरंजन, क्षर पुरुष, इसका वास्तविक नाम कैल है, कैल। इसने सोचा कि हम तीन जने एक लोक में, एक द्वीप में, और बाकी सभी अपने अलग अलग द्वीपों में ठाट से रह रहे हैं। इसने फिर अपनी सोच के अनुसार सोचा कि मैं तपस्या करके पिताजी से, परम पिता परमेश्वर कबीर देव जी से, सत्य पुरुष से अलग स्थान प्राप्त करूंगा। ऐसा ही किया, इसने एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या की। हम कैसे फंसे इसके जाल में? जब ये एक पैर पर खड़ा तपस्या कर रहा था, इसने 70 युग के पीरियड तक, जैसे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये चार युग हैं 43,20,000 वर्ष के, तो ऐसे ऐसे 70 युग तक इसने तपस्या की, 70 युग। जब ये तपस्या कर रहा था तो हम इसके ऊपर आसक्त हो गए, इसके ऊपर हम आसक्त हो गए कि देख कितना दिन हो गए इसने एक टांग पर खड़ा है, वो कमाल है, ओ हो हो। अब उधर से परमेश्वर ने आकाशवाणी की कि बच्चों तुम इसकी इस कलाबाजी को मत देखो, व्यस्त रहो, अपना मस्त रहो, इसमें मत आस्था बनाओ। हम ऊपर से तो सावधान हो गए पर अंदर से कसक गई नहीं, हम इसको हृदय से चाण लाएंगे, अपने मालिक ने भूल गए, क्योंकि जो हमें सारा सुख दे रहा था, ना कोई रोग था ना दुख था, वहां पर सुंदर शरीर था, सब फ्री आहार था, हम उसको छोड़कर और इसको चाहने लग गए, हम पतिव्रता पद से गिर गए, हम अपने मालिक के मन से उतर गए। परमेश्वर ने बहुत बार कहा पर हम बाज नहीं आए। कौन? जितने भी 21 ब्रह्मांडा में चींटी, जीव जंतु, मच्छर, मक्खी, हाथी, घोड़े, शेर, बाघ जो बने हुए हैं, और मनुष्य, ये सभी। परमात्मा ने पूछा कि ज्योति निरंजन बोल क्या चाहता है तू? इसने कहा परमात्मा यहां हमारे लिए थोड़ा स्थान है, अलग स्थान दे दो। परमेश्वर ने कहा कि 70 युग के तप के बदले में तुझे राज देता हूं, 21 ब्रह्मांड दे दिए तेरे को चल। जैसे कोई सेठ धनी पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट दान कर दे, दे दे उसका हक ले वे ले जा, लेकिन अभी उसमें कंस्ट्रक्शन भी करनी। ये चारों प्लाटों में घूमता रहा, फिर 21 प्लाटों में घूमता रहा ब्रह्मांडों में, फिर इसने सोचा इसमें कोई रचना हो। रचना की सामग्री भी भगवान से मिल रही। हम सभी कबीर परमेश्वर के आगे भिखारी हैं। इसने 70 युग तप फिर किया। परमेश्वर ने पूछा भी क्या चाहता है बोल। तब इसने कहा प्रभु मुझे कुछ सृष्टि रचने की सामग्री दे दो, मटेरियल दे दो। परमेश्वर कबीर जी ने कहा तथास्तु, 3 गुण और 5 तत्व दे दिए। अगले बेटा खेल खिलौना थे। इसने सोचा भी इसमें कंस्ट्रक्शन भी कर लूंगा, लेकिन जीव नहीं होंगे तो मेरा अकेले का दिल नहीं लगेगा। इसने 64 युग तप फिर किया। तब परमेश्वर कबीर देव जी ने सतपुरुष जी ने पूछा कि क्या मांगता है ज्योति निरंजन। जो तूने मांगा था वो मैंने तुझे दे दिया, अब क्या चाहता है। इसने कहा प्रभु मुझे जीव दे दो। परमात्मा बोले वह जीव नहीं दे सकता, ये तो मेरी आत्मा है, मेरा अंश है, और मैं तेरे को दे नहीं सकता, तू इन्हें घना दुखी करेगा। यू कहने लगा नहीं जी, मैं सत का राज करूंगा, जो जिसा कर्म करेगा वैसा ही फल पा लेगा, मैं तंग नहीं करूं। बोला वो नहीं, मेरे यकीन नहीं। परमेश्वर को पता था कबीर जी को कि हम वहां रहने लायक रहे को नहीं, हमने बहुत घिनौना कर्म कर दिया। जो हमें सारे सुख दे था, सब तरह से हमें से प्यार करे था, उस परम पिता को छोड़कर हम इस काल के ऊपर आसक्त हो गए। परमात्मा जान गए थे कि ये यहां नहीं रखे जा सकते। तो परमेश्वर ने कहा भी एक बात है, यदि कोई सब इच्छा से तेरे साथ जाना चाहता है तो मुझे कोई इतराज नहीं, जा पूछ ले। ज्योति निरंजन हमारे पास आया, हम सभी पहले इसके ऊपर आसक्त थे। पुणात्माओं या बीमारी अपने सतलोक से लगी, कौन सी, जैसे आप देखते हो जवान लड़के और लड़कियां कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, वो फिल्म बहुत देखते हैं और फिल्मों में सेलेक्ट कर लेते हैं कि यू हीरो मेरा फेवरेट हीरो है या मेरी फेवरेट हीरोइन है। वो उछल कूद कर अपने पेट के लिए, रोजी रोटी के लिए चटक मटक है, और ये फेवरेट बना ले उन्हें, लेना एक ने देने दो। या हिसार में या बरवाला में कोई हीरो अभिनेता या अभिनेत्री आ जा, इन बोले बत इन बालकों का देखो वहां कट हो जाएगा, इतने कट्ठे हो जाएंगे, कित कित तो आ जाएंगे, स्कूल कॉलेज भी छोड़ देंगे, और वो 1 किलोमीटर तक स्टेज पर खड़ी दिखाई देंगे वह, और दूर तक वो खड़े वो खड़े। हाँ, लेना एक न देने दो, धक्के खा के सारा दिन घर आ जाएंगे। बता वो उन के देंगे वह फेवरेट इनको। तो ये बीमारी हमारे वहां से लगी थी, यो अपने लिए डले ढो रहा था और हम इसने चाण लाएंगे। तो जो ही ये हमारे पास आया, हम तो पहले इस पर आसक्त थे, चारों तरफ मंडराए गए इसके। तो इसने कहा कि पिताजी से मैंने ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं, मेरे साथ चलोगे, वहां पर मैं बनाऊंगा हीरे पड़ने द्वारा के पहाड़ होंगे, दूधा की नदी बनाऊंगा, बड़े फलदार वृक्ष होंगे, स्वर्ग बनाऊंगा, महास्वर्ग बनाऊंगा, वहां ठाट से रहा करेंगे। तो हमने कहा कि हम चलने को तैयार हैं यदि पिताजी आज्ञा दे तो, पिताजी की अनुमति हो जावे तो हम चल पड़ेंगे। तो ज्योति निरंजन फिर परमेश्वर के पास गया, प्रार्थना की करबद्ध होके, हे प्रभु हे पिताजी, कुछ आत्माएं कुछ जीव आत्माएं मेरे साथ चलने को तैयार है। परमेश्वर ने कही कि मेरे सामने हां भरवा, जो मेरे सामने हां सभी करती देगा मैं उसको तेरे साथ भेज दूंगा। तो आगे दोनों आगे या सरपुरुष और परम अक्षर पुरुष, परमेश्वर ने कहा भी कौन कौन इस ज्योति निरंजन के साथ जाना चाहते हैं, हाथ खड़े करो। अब अपने पिता के सामने सभी को शर्म आई, क्यों कैसे हाथ करेंगे, नीची गर्दन कर ली। परमेश्वर ने कहा, अरे तू उन्हों कहता ये सारे तैयार हैं, कोई बोलता है को नहीं, सन्नाटा छा गया। परमेश्वर ने कहा भी बोलो भाई, कौन जाना चाहते, बोलते क्यों नहीं। तो हम में से एक ने सबसे पहले डेर किया, हिम्मत करी, और वो आत्मा खड़े हुए, खड़ा होकर कहा कि मैं इसके साथ जाना चाहता हूं। वहां पर हम हंस रूप में हैं, वहां हंस बोले जाते हैं सभी को, कहते मैं इनके साथ जाना चाहता हूं। परमात्मा बोले वे ठीक, एक और नू देख कर फिर हमने सोची कहीं हम पीछे रह जा रही हो, एक ला लूट लूट ले इसी ज्योति निरंजन के साथ जाके। फिर तो देख सबने दोनों हाथ खड़े कर लिए, ये असंख्यों प्राणी। परमात्मा ने कहा कि भी ठीक है, ये जितने भी तेरे साथ जाना चाहते हैं इनके नंबर मैंने नोट कर लिए, और मैं अपने हिसाब से इनको भेज दूंगा तेरे पास, सारे चले जाए, तू जा अपने ब्रह्मांड। 21 ब्रह्मांड पहले सतलोक में ही थे, ये वापस आ गया, वहीं चला गया। पीछे से परमात्मा ने जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी उसका एक युवा कन्या बना दिया, लड़की बना दिया, और उसके शरीर में सभी आत्माओं को बीज रूप में डाल दिया, और उस लड़की से कहा बेटी मैंने तेरे को वचन शक्ति दे दी है, आप ज्योत निरंजन के पास जाओ और जितने भी जीव वो कहे तो वचन से उत्पन्न कर सकती है, नर और मादा, और वो सभी जीव मैंने तेरे शरीर में प्रवेश कर दिए। अपने पुत्र सहजदास से कहा कि सहजदास आप जाओ इस अपनी बहन को उस ज्योति निरंजन के पास छोड़ आओ। अब सहजदास जो उन सबसे पहले जो 16 उत्पन्न हुए थे उनमें से एक सहजदास है और एक जोगजीत है, और भी एक अचिंत है, ऐसे और भी बहुत हैं। तो वहां उप लेकर ये गया, लड़की को वहां छोड़ दिया उसके पास, और कहा कि पिताजी का ये आदेश है कि जितने जीव तो कहेगा ये बहन उत्पन्न कर देगी, इसको वचन शक्ति दे दी है, सब जीव इसमें प्रवेश करती है। वो सहजदास छोड़ के आ गया अपने द्वीप में। अब ये बीमारी अपने और सतलोक से लगी, इस काल को लगी, काल से फिर हम उत्पन्न हुए तो हमारा भी वही अंश वही वृत्ति होती हो रही है कि अकेली लड़की को देखते ही मन में दोष उत्पन्न हो गया, किसके, ज्योति निरंजन के, और उसने उसके साथ दुष्कर्म करना चाहा, दुराचार करना चाहा। लड़की ने कहा कि ज्योति निरंजन मेरे पास पिताजी की दी हुई वचन शक्ति है और तू ये पाप मत करे, जितने जीव तू कहेगा मैं बना दूंगी, तू ये मैथुन सृष्टि प्रारंभ मत कर। पर उसने एक नहीं सुनी, अद से आगे बढ़ गया, जबरदस्ती करने लगा। लड़की ने अपनी इज्जत की रक्षा करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप बनाया, और जो ही वो बद व्यवहार करते हुए मुंह खोल रहा था आलिंगन बंद करके, तो उसके मुंह के माध्यम से पेट में पहुंच गई, वहां से प्रार्थना की, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, हे पिताजी, मेरी रक्षा करो, मेरे को ऐसे ऐसे इसने बद व्यवहार किया मेरे से और मैंने इसके पेट में शर्म ले रखी है। तो परमेश्वर ने अपने ही पुत्र जोगजीत का रूप बनाया और वहां आगे और कहा ज्योति निरंजन तने जुलम कर दिया, और इस सतलोक के अंदर जो ऐसा कर्म करता है उसको नहीं रखा जाता, और उसको एक बीमारी लग जाती है, आज से तुझे एक ऐसा रोग लग गया, 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का तू आहार करा करेगा प्रतिदिन, और 1,25,000 जीव प्रतिदिन उत्पन्न किया करेगा और निकल जाए यहां से, आदेश है परम पिता का, परमेश्वर का। आदेश है परमेश्वर का, चला जाए 21 ब्रह्मांड को लेकर के यहां से। वो लड़की उसके पेट से बाहर निकाल दी और कहा आज के बाद तेरा नाम काल होगा। उसी समय उसका स्वरूप बिगड़ गया, ओछा माथा, लंबे दांत, सांवला चेहरा, विकराल टाइप। और वहां से इन दोनों को, दुर्गा को और इस शर पुरुष को समेत 21 ब्रह्मांड के निकाल दिया। ये वहां से सतलोक से चलकर 16 शंख कोस दूर आकर अप पर रुक गए और यहां फिर चक्कर काटने लगे। अब ज्योति निरंजन ने कहा कि दुर्गा अब मेरा कौन के बिगाड़ेगा, मेरे को जो सजा मिलनी थी मिल गई, अब मनमानी करूंगा। फिर उसने जबरदस्ती उस लड़की से करनी चाहिए, उसने फिर यही याचना की पर नहीं माना, हद से ज्यादा बढ़ गया। उसने अपनी नख रेखाओं से, अपने नाखूनों से वो स्त्री इंद्री बनाई और शादी की दुर्गा से, जो है 3 पुत्र उत्पन्न किए, रजगुण युक्त ब्रह्मा जी, सतगुण युक्त विष्णु जी और तमगुण युक्त शिवजी को बनाया। इस काल भगवान ने 21वें ब्रह्मांड के सबसे ऊपर के स्थान पर 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण युक्त, एक सतोगुण युक्त, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र। अब रजोगुण प्रधान क्षेत्र की डेफिनेशन बताते हैं आप जी को। जैसे एक मकान में 3 कमरे हों, 3 कक्ष, एक कक्ष में चीतर लगा रखे हो, अश्लील चीतर, अर्धनग्न शरीर, तो वहां जाते ही मन में विकार ऑटोमेटिकली आएंगे और जब तक वहां रहेगा उन पर नजर रहेगी, मन में दोष पैदा रहेगा, ऐसा स्वभाव बन जाएगा। दूसरे कक्ष में लगा रखे हैं साधु संत फकीरों के और वहां जाते ही आत्मा उनके चरित्रों से परिचित होकर के लीलाओं से एकदम शांत हो जाती है, बहुत शांत मन हो जाता है, उसका स्वभाव बन जाता है जब तक वहां रहते हैं। और तीसरा मान लीजिए बना रखे, जैसे देशभक्तों के, शहीदों के चित्र लगा रखे हों, सूरवीरों के, उनकी कथाओं से परिचित हम होते ही हैं, वहां जाते ही वैसा ही शरीर हो जाएगा, वैसा ही मन हो जाएगा और ऐसे ही खून खोलने लग जाएगा उनके विचार सुनकर के, ऑटोमेटिकली है स्वभाव के। तो ऐसे ही इस काल भगवान ने ऊपर 3 रजोगुण प्रधान, सतोगुण प्रधान और तमोगुण प्रधान 3 क्षेत्र बना रखे। जब ये दुर्गा को अपनी पत्नी रूप में रजोगुण प्रधान क्षेत्र में रखता है, इनके दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली रजोगुण युक्त हो जाता है, उसका वैसा ही स्वभाव बन जाता है और उसमें वो गुण प्रवेश कर जाता है। और दूसरे स्थान पर जब ये जाते हैं, उस बच्चे की उत्पत्ति जब हो जाती है रजोगुण प्रधान वाले की, ब्रह्मा की, उसको अचेत रखते हैं और जैसे कोमा में परवरिश जारी रखते हैं, कोमा में रखते हैं उनको। जब वो युवा हो जाते हैं तो ब्रह्मा को कमल के फूल पर रख देते हैं, इसी प्रकार विष्णु को शेष सैया पर और शंकर भगवान को कैलाश पर्वत पर। तो दूसरे अक्षेत्र जो सतोगुण प्रधान अक्षेत्र होता है उसमें ये दोनों जब रहते हैं तो इन दोनों का स्वभाव उस अक्षेत्र में सतोगुण युक्त हो रहता है और इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका भी स्वभाव ऐसा ही हो जाता है। वो बालक रूप में ही उस बच्चे को फिर ये अचेत रखते हैं और फिर उसकी परवरिश जारी रखते हैं। युवा होने के बाद उसको फिर शेष नाग उत्पन्न करके अपनी वचन शक्ति से शेष नाग के ऊपर लुटा देते हैं, बेहोश रखते हैं, फिर उनको वहीं से इसको सचेत करते हैं। और तीसरे स्थान पर जब जाते हैं जो तमोगुण प्रधान क्षेत्र है तो वहां इन दोनों के संयोग से ये काल जो है ये शंकर रूप बना लेता है। शंकर का रूप जैसे आप देखते हो, ये जो कि तुम डिटो को पी उस काल का पुत्र है, तो वहां दुर्गा को पार्वती बनाकर रूप धारण करवा लेता है, स्वयं शंकर रूप धारण कर लेता है, तमोगुण प्रधान क्षेत्र में रहते हैं और वहां इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली ऐसा ही हो जाता है। और जब ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र में होते हैं तो ये विष्णु रूप धारण कर लेता है, दुर्गा को सावित्री रूप धारण करा देता है, इन दोनों के संयोग से वो पुत्र वैसा ही उत्पन्न होता है। ऐसे ही रजोगुण प्रधान क्षेत्र में होते हैं तो ये ब्रह्मा रूप धारण कर देता है पांच मुंह वाला, और दुर्गा को सावित्री रूप धारण करा लेता है, इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो उसी का हम सकल हो जाता है। इस प्रकार ये तीनों पुत्रों की उत्पत्ति करता है। जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इनको अलग अलग सचेत कर देता है, ब्रह्मा को कमल के फूल पर, विष्णु को शेष नाग की सैया पर, और वहीं से उसके नाभि कमल से फूल निकाल देता है, फूल के ऊपर वो ब्रह्मा ने बैठा दिए, फिर वो सचेत कर दिए, फिर वो नीचे उतरा ब्रह्मा, वहां विष्णु सोया पाया, वो फिर उसमें से एक भूतनी निकली, ब्रह्मा के अंदर दुर्गा ने अपना अन्य रूप बनाकर विष्णु जी को बेहोश कर रखा था, ऐसे ब्रह्मा को कर रखा था, तो उनमें से निकल गई तो वो सचेत हो गए, ऐसे विष्णु जी के शरीर से ये दुर्गा फिर निकली तो ऊपर आकाश में खड़ी होगी, वो विष्णु जी सचेत हो गया। इतने में शंकर जी भी वही भेज दिया प्रेरित करके, सचेत करके। अब ये तीनों इकट्ठे हो गए, इन फिर ये दुर्गा ने कहा कि तुम तीनों ऊपर से एक विमान भेजा काल ने कि इनकी फड़क निकाल दे अभी, कहीं ये फिर आगे चल के अपने आप को भगवान मान बैठे और सृष्टि रचना ना करें, कोई बकवाद करने लग जाए। तो उसने इस दृष्टिकोण से ऊपर से एक विमान आया, दुर्गा ने कहा कि पुत्रों तुम अपना अपना काम संभालो, ब्रह्मा सृष्टि करेगा, विष्णु सतीथि करेगा और शिव जी संहार करेगा। इन्होंने कहा कि सब जगह जल ही जल है, हम किसकी सृष्टि सतीथि संहार कैसे करेंगे। आकाश से एक विमान आया, दुर्गा ने कहा तुम तीनों इसमें बैठो, तुम्हारी ऊपर की सैल कराती हूं। तीनों उसमें बैठ गए, दुर्गा ने अपनी शक्ति से उनको आकाश में विमान भेज दिया। ये देवी पुराण तीसरा स्कंद अध्याय नंबर 5, 6, 7 में वर्णन है। तो ऊपर आकाश में जब विमान गया तो ब्रह्मलोक में पहुंचा, वहां देखा एक दूसरा ब्रह्मा और बैठा है, ये काल दूसरे रूप में बैठा है, दूर से देखा तो विष्णु और शंकर ने पूछा, शंकर जी ने पूछा कि ब्रह्मा ये और ब्रह्मा कौन है। ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे नहीं मालूम ये ब्रह्मा, ये जगत का रचयिता ब्रह्मा कौन है, मैं कौन हूं, हमारा क्या उद्देश्य है, मेरा दिमाग चक्कर काट गया। वहां से फिर और हमारा विमान आगे गया तो वहां एक त्रिनेत्रधारी और शिव जी निकला जो नंदी वृषभ पर बैठा था, उसको देखकर हमारे साथ ब्रह्मा जी बता रहे हैं, उसको देखकर हमारे साथ बैठा हुआ बैठे शंकर जी का जो हमारा भाई शंकर है, इसका सिर चक्कर काट गया कि और शिव जी कौन है, शंकर कौन है। फिर हम आगे को चल दिए, आगे देखा तो एक विष्णु और पाया, एक लक्ष्मी और बैठी देखी। इसके बाद फिर ये आगे चले गए, वहां दुर्गा मिली। अपने आत्माओं ये जो कथा दास ने सुनाई थी, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताई थी कि मां अष्टंगी पिता निरंजन ये जम दारुण वंशन अंजन। अब इसको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि कौन कौन से सदग्रंथों में ये परमात्मा की बोली हुई वाणी कहां से सिद्ध होती है। ये देखिएगा शिव पुराण, संक्षिप्त शिव पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, इसके कौन है संपादक, हनुमान प्रसाद पोदार। ये कहां से प्रकाशित है, प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। इसके 98 पृष्ठ पे रुद्र संहिता पृष्ठ नंबर 98 अध्याय नंबर 5 में लास्ट में, अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। अब ये रुद्र संहिता का छठा अध्याय यहां से प्रारंभ होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणि अपने पुत्र नारद से ब्रह्मा जी बता रहे हैं, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो, तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे न चंद्रमा आदि आदि, जल का भी कोई सता नहीं थी। उस समय सद ब्रह्म माने सत पुरुष, ब्रह्म कहो चाहे पुरुष कहो, सत माने सत पुरुष, वह सत पुरुष, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था, यानी सत पुरुष ही शेष था। सौ पर प्रश्न नंबर 100 पर, 25 परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं। उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ, तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति यानी आकार की कल्पना की। जो मूर्ति रहित वह परब्रह्म है, परम ब्रह्म है, उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हें को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने, ये सदाशिव काल है, अपने विग्रह से शरीर से, विग्रह माने शरीर से, स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी, यानी उनके अंदर थी या दुर्गा। अब ब्रह्मा ने परमात्मा से ज्ञान सुना था, अगर वह बात माननी को ना, अब खिचड़ी बनाकर बता रहे हैं। उस प्राशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी विकार रहित बताया गया है, वह शक्ति अंबिका कही गई है। जो सदाशिव के पेट से निकली है ना शरीर से, उसके बारे में बता रहा ब्रह्मा, उसको प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, ओह तीनों देवताओं की माता त्रिदेव जननी, ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न करने वाली नित्या और मूल कारण कहते हैं, सदाशिव द्वारा प्रकट की गई। अब सदाशिव काल को कहते हैं, आगे दिखाएंगे, उस शक्ति के 8 भुजाएं है, अष्टंगी दुर्गा, स्पष्ट हुई, नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं, वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। क्लियर कंसेप्ट, एकाएकनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदा शिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। यहां देखिएगा, अब वो अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं, उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के नाथ नहीं साथ है, ये काल रूपी ब्रह्म भी इस सदाशिव कहो, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कहो, चाहे काल कहो, चाहे सर पुरुष कहो, ये क्लियर हो गया। काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, ये नाथ नहीं है, शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। आगे देखो, जो सबके ऊपर विराजमान है वो प्रिया और प्रियतम शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। प्रिया और प्रियतम पति पत्नी रूप में, या दुर्गा और युकाल सदाशिव, शिव और शिवा ने, काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र यानी काशी को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। आगे देखना, ब्रह्मा बता रहा है अपने पुत्र नारद को, देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे एक पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में सब इच्छा अनुसार वितरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा विचार करके, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के दसवें अंग पर अमृतमल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया। फिर वहां, फिर तो वहां से एक पुरुष प्रगट हुआ, एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। आगे देखो, शिव ने कहा वत्स बेटा, इस काल ने कहा विष्णु बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। ये छठा अध्याय समाप्त हो गया, अब सातवां शुरू होता है रुद्र संहिता का। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, नारद से कहते हैं कि तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर साम सदाशिव ने, इस काल में और दुर्गा ने पूर्वोत्त प्रयत्न करके जैसे विष्णु उत्पन्न किया, दोनों के संयोग से मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया, मुने उन परमेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपने योग माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि में डाल दिया, लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। अपने आत्मा, अब यहां लेखक अनुवादकर्ता जो है थोड़ा सा असमंजस में पड़ गया कि भाई शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, लेकिन कहते हैं चोर चोरावे तुम्बड़ी व गड्ढे पानी में, व गड्ढे व ऊपरावे न सच्चाई छानी। या देखो 110 पृष्ठ पे ये है संक्षिप्त शिवपुराण, देखो और ये नौवा अध्याय। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीन देवताओं में गुण हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव, रुद्र कहो चाहे महेश कहो, परंतु शिव ये इनसे नारद का पिता है, वो गुणातीत माने गए हैं। अब क्लियर कंसेप्ट 25 और 26 पृष्ठ करेगा कि इन तीनों से भी न्यारा एक और है जो काल है। एक समय ब्रह्मा और विष्णु में एक झगड़ा हो गया इस बात पर, ब्रह्मा कह विष्णु जी को मैं तेरा बाप, विष्णु जी कहता मैं तेरा बाप, इन दोनों का खूब लठबाजा। इनके बीच में काल ने, इनके पिता ने एक तेजो में स्तंभ खड़ा कर दिया, एक पिल्लर सा खड़ा कर दिया तेजो में, बहुत लंबा चौड़ा, ये लड़ना छोड़कर उसके ऊपर नीचे चल पड़े, किसी ने देखा कितना लंबा चौड़ा है। फिर काल आ गया वहां पर, इनको समझान लग गया, फिर इन्होंने पूछा कुछ प्रश्नोत्तरी की, तो क्या बताते हैं ये देखिएगा प्रश्न नंबर 25 पे संक्षिप्त शिवपुराण, प्रश्न नंबर 25 पे, और ये है विद्वेश्वर संहिता, विद्वेश्वर संहिता, ये है इनका वो ब्रह्मा विष्णु महेश के, ब्रह्मा और विष्णु के बीच में स्तंभ खड़ा कर दिया काल ने। तो इन्होंने यहां पूछा, ब्रह्मा ने पूछा, ब्रह्मा विष्णु ने पूछा, प्रभो सृष्टि आदि पांच कर्तों के लक्षण क्या क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। युकाल बोलिया, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से, सृष्टि और स्थिति नामक दो कर्तव्य, ये दो काम प्राप्त किए हैं, कार्य जॉब, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर, ये हो गए ना दो, तो ये ऊपर हो गए रुद्र और महेश्वर, ये दो और न्यारे हो गए, इनको मैंने सहार और त्रोभाव मुझसे प्राप्त किए, परंतु अनुग्रह नामक कर दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर ने अपने कर्म को ये भूले नहीं, इसलिए मैंने इनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। ये वे रूप वेश और कर्त वाहन आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं। काल कह रहा है कि ये मैं ऐसे रूप में प्रकट होता हूं और ये मेरे ही समान है। अब यहां क्लियर करना पड़ेगा पुण्यात्माओं कि ये काल बोल रहा है और इसी ने गीता बोली थी, ये देखना आगे इसी पे 26 पृष्ठ है ये विद्वेश्वर संहिता का। ये काल बोल रहा है, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार रूप में प्रसिद्ध है, ओम ओंकार कहते हैं ओम को, और वह मंगलकारी मंत्र है, महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूं, यह मेरा मंत्र है, यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार यानी इस ओम का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। अब देखना ध्यान से, मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा तो मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। ये पांच हो गए, एक तो यो आकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद, ये पांच हो गए। इस प्रकार पांच अवयव से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह पर्वण ओम नामक एक अक्षर हो गया। अब यहां देखो, इन अडंगा के रखा है, ये अनुवादकर्ता ने बात बिगाड़ी है। इसने क्या लिखा कि ओम नमः शिवाय, यह पंचाक्षर मंत्र है। अरे ये पांच अक्षर तो डिफाइन कर दिए इसने ऊपर कि मेरे ये मंत्र हैं, अकार इस ओम मंत्र में ये पांच मंत्र हैं, पांच मंत्र का ये ओम बनता है, उकार मकार बिंदु और नाद। ये समझते हैं, इस प्रकार सभी इन सभी अयों से एकीभूत होकर पांच अयों से युक्त ओंकार निरंतर हुआ है, विस्तार हुआ ओंकार का विस्तार पांच अयों से, पांच मंत्रों से, इन सभी अयों से एकीभूत होकर ये पर्वण ऐसा हो गया। और ये के अड़ंगा देख, ये मूल संस्कृत में नहीं है, इसने ब्रैकेट कर रखा है। ये ओम नमः शिवाय अनुवादकर्ताओं ने बात बिगाड़ दी और श्रद्धालुओं ने ये हिंदी पढ़ी और ओम नमः शिवाय का रगड़ा ला दिया, ओम नमः शिवाय ओम, ये मंत्र गलत है, ये मंत्र है ही नहीं जाप करना इसने। अब यदि आपको मूल संस्कार दिखाऊं तो उससे और कंसेप्ट क्लियर हो जाता। अब इससे स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म दुर्गा और काल रूपी भगवान के संयोग से पति पुत्री व्यवहार से हुआ, और ये परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया था, आज नहीं, लेकिन उस समय इन नकलियों ने, इन अज्ञानियों ने परमात्मा की इस अमर वाणी को ऊपर नहीं आने दिया। वो क्या कहते थे, कहते थे कि कबीर अशिक्षित है, कबीर अक्षर ज्ञान नहीं जानता, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की आलोचना करता है, ये दुश्मन है हिंदू समाज का, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म मृत्यु वाला बताता है। और पुण्यात्माओं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं स्वीकार करते हैं हमारा जन्म और मृत्यु होता है। पुण्यात्मा सौभाग्य आपका, परमात्मा ने बुद्धि दी प्राणी को, ये प्रोजेक्टर बन गए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बन गया, ये अपने काम आओगे, आप जी का काम आओगा, परमात्मा का ये सारा जो कुछ मालिक ने दिया है, एक दिन पूरे विश्व में ये हाथों हाथ सच्चाई मिलेगी, सदग्रंथ आपके रूबरू होंगे, सब पुण्यात्मा एकदम फड़क कर दूसरे पंथों को त्याग कर परमात्मा की सत भक्ति करके अपने उस स्थान पर चलेगी जहां से हम आए थे, जहां कोई दुख नाम की वस्तु नहीं है, सुख ही सुख है। अब देखिएगा ये श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसके कौन है संपादक, हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके 123 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं, तीसरा स्कंध 123 पृष्ठ, विष्णु जी अपनी माँ दुर्गा की महिमा सुना रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्वासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं, हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, प्रकृति दुर्गा को भी कहते हैं। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से उत्प्रगट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, सिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो, इस संसार की सृष्टि स्थिति और सहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी, नियमानुसार कार्य में हम तत्पर रहते हैं। अब इससे होगा क्लियर कंसेप्ट, दुर्गा पुराण में ये स्वयं स्वीकार करते हैं, हमारा जन्म और मृत्यु होता है, और मैं रजगुण तुम्हारी माता है, हम आपके पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। और परमात्मा 600 वर्ष पहले यही कहा करते थे, और इन अज्ञानियों ने उस मालिक का इतना विरोध करा दिया, ओए पूरी जनता को, मुसलमानों ने अपने मुसलमानों को भड़का दिया, हिंदुओं के गुरुओं ने अपने हिंदुओं को भड़का दिया कि ये जुल्हा तो हमारे देवी देवताओं की निंदा करता है, और जो ये विद्वान कहा कर कहलाते थे आज तक हमें नहीं बता सके पुराणों में क्या लिखा है, और ना वेदों का ज्ञान था इनको, आपने देख लिया सुबह सिर्फ बताया था देवी पुराण में कि लिखा है कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और दुर्गा की पूजा करते थे, थरा गज भैया, और दुर्गा कहती है सब बात छोड़कर केवल एक ब्रह्म की पूजा करो, सातवें स्कंध में 562 पृष्ठ पे 63 पृष्ठ पे, और वो ब्रह्म लोक में रहता है, उसका ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, और कोई पूजा मत करो, किसी मंत्र का जाप मत करो, और ब्रह्म कहता है गीता जी में कि मेरा 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विभारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तजन देह सयाति परमाम गति, मेरा केवल एक ओम अक्षर है, एक अक्षर ओम है, और वही गीता इसमें भी आपने शिव पुराण में देखा, वो खुद कह रहा है कि मेरा एक ओंकार पर्वण ओ मंत्र है जो 5 अवयवों से बनकर एक अक्षर हो गया। अब परमात्मा क्या कहा करते थे, मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन तसम इनको फेरा मोतिया बंदरे, जिसके सफेद मोतियाबिंद हो जाता है उसकी आंखें बड़ी स्वस्थ दिखाई देती है पर उसको दिखता कुछ नहीं। ऐसे ही महाविद्वान दिखाई दिया करते थे, संस्कृत बोला करते थे, इनको महर्षि की पदवी दे रखी थी, इनको वेदों और पुराणों का कह कह का पता नहीं था। और उस परमेश्वर ने जिनको ये निरक्षर बताते थे, अज्ञानी मूड बताते थे, उन्हें 600 वर्ष पहले वेदों पुराणों और इन गीता जी का सिंपल लैंग्वेज में यथार्थ चित्रण करके वर्णन करके लिपिबद्ध करवा रखा। आज हमें यह पहचान होगा कि सचमुच कबीर इज गॉड है, कबीर जी इज गॉड है, कबीर परमात्मा है। अब अभी आपने सुना धर्मदास ये जग बौराना, कोई ना जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा। और जग से कहिए एक राम न्यारा, न्यारा राम का आपको पता लग गया। ये तत्व ज्ञान की कुंजी है ये सृष्टि रचना। अब क्या बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश अपने पिता काल के लिए तीनों लोकों में जीव की अपने की व्यवस्था कर रहा है। जैसे ब्रह्मा के अंदर एक ऐसा गुण है जिसके प्रभाव से हम अपने आप इतने प्रेरित हो जाते हैं, युवा होते ही संतान उत्पत्ति करते हैं, और फिर एक दूसरे मोह ममता इतनी प्रबल हो जाती है जीव के वश के लिए इसे दूर हो जाऊं। ये सतोगुण भगवान शिव के गुण का की करामात है। और तीसरा सहार काल का पुत्र तीसरा तमोगुण कर देता है। अब उसके बारे में क्या बताते हैं सुनना ध्यान से। माया आदि निरंजन भाई अपने जाए आप खाई। ओए होए माया और ये दुर्गा, माया और काल है, कहते हैं आप जम है आप खावे। ये अपने पति के लिए पैदा करती है और फिर ये तीनों पुत्र आ गए हमें नर नारी करके यहां संतान उत्पत्ति करवा कर काल के पास भेज देते हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वो काल खाता है जब इनकी मृत्यु हो जाती है, फिर नए पुण्य आत्माओं को इसी पद पर अपनी पत्नी दुर्गा से उत्पन्न करके स्थापित कर देता है। माया आदि निरंजन भाई अपने जाए आप खाई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओहंग सोहंग का है खेला। शिखर सुन में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायण मैल पठाई। आप तो गुप्त बैठ गया ऊपर थे और दुर्गा को यहां का कंट्रोलर बना दिया नीचे के ब्रह्मांड के नीचे के हिस्से में। लाख ग्रह से नित उठ दूती, माया आद तकत की कुती। अभी दुर्गा को भी मालिक धमका रहा है कि ये पैदा करती है और अपने पति को भेज देती है तो ये भी दोषी है। लाख ग्रह से नित उठ दूती, माया आद तकत की कुती। होय होय, क्योंकि सबसे पहले घटियापन इसने करा, परमात्मा को त्याग के रिसकाल को चाहने लगी। तो कहते हैं माया आद तकत की कुती, इस परमात्मा की कुतिया है यानी इसने घटिया कर्म किया, अपने मालिक को छोड़कर इधर चले। फिर हम भी इसे दुष्ट हम हो गए जब उस मालिक ने छोड़कर यहां मरे। लाख ग्रह से नित उठ दूती, सुबह उठते एक लाख ये काल खा जाता है जिसकी नियमत या दुर्गा है, इसलिए इसको साथ में लताड़ रहे हैं प्रभु। सवा लाख घड़ी नित भांडे, अंसा उत्पत्ति पर ले डांडे। ओए होए, कहते हैं सवा लाख रोज पैदा करते हैं, एक लाख को खा जाता है। सवा लाख घड़ी नित भांडे, भांडे मानिए बर्तन जिसमें यह जीवात्मा बंद कर रखी है, इसको कई नामों से पुकारा है, इसको महल भी कहते हैं। कहते हैं करने नो दीदार महल में प्यारा है, महल भी कहते हैं, इसको घट भी कहते हैं, इसने भांडा गढ़ा भी कहते हैं, इसको पिंड भी कहते हैं। सवा लाख ग्रह सैन्यत उठ दूती, माया आज तकत की कुती। सवा लाख घड़ी एनत बांडे, अनसा उत्पत्ति पर ले डांडे। अब इन बोली आत्माओं को जीवों को मेरे हंसों को जन्म और मृत्यु के दंड से दुख से दुखी किया जा रहा है। अंसा उत्पत्ति प्रलय, उत्पत्ति माने जन्म, प्रलय माने मृत्यु के दंड से दुखी कर रही है, जन्म मरण के चक्कर में डाल रखी है। ये तीनों चेला बटपारी, सिरजे पुरुषा सिरजी नारी, खोखा पुर में जीव भुलाए, सोपन बिष्ट बैकुंठ बनाए। ये अरहट का कुआ लोई, यागल बंजा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अरहा अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा। अरब अलिल इंद्र है भाई, हर हर डोर बंधे सब आई, शेष महेश गणेश वरताही, हर हर डोर बंधे सब आई। शुक्रादिक ब्रह्मादिक देवा, हर अट डोर बंधे सब खेवा, ये कुट करता फिरता देखा, हर हट डोर कहो सुन देखा। ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हर हट डोर बंधे सब आवे। ये है खूखा पुर का कुआ, इसमें पड़ गया वो निश्चय मुआ। अब अरहट डोर, रहट की डोर, रहट कैसे बताया है ये देखो, आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, इसको कहते हैं अरहट, रहट। देसी भाषा में इसे रहट कहा जाता था, रहट, अरहट बोलते हैं इसको, अरहट। ये एक कुएं की एलिवेशन दिखा रखी है, नो साइड एलिवेशन। ये जल है ना, सोच ले इतना काट के दिखा दिया चित्र में। और ये एक पुली होती थी, इस पुली के ऊपर ये एक पुली होती है, पहले होते थे रेट, इसमें ऐसे गिरारी टाइप से लगे होते थे। इसके ऊपर एक चैन डाली जाती थी, लगभग एक फुट चौड़ी लोहे की, और इस चैन के ऊपर बाल्टी वेल्ड कर दी जाती थी। ये बाल्टियां हैं, ये नीचे से ये पुली चलाई जाती थी बैलों के द्वारा, एक कोल्हू टाइप अलग से बना हुआ होता था, इसकी पुली उसमें जाती थी और उससे ये घूमती थी ऐसे। इसके घूमने से चैन चलती थी और नीचे से बाल्टी पानी से भरकर आती थी और ऊपर आकर यहां खाली होती थी, यहां से ये खेतों में सिंचाई के लिए जल चला जाता था। तो नीचे से भर के आई ऊपर खाली होगी, नीचे से भर के आई ऊपर खाली होगी, नीचे से भर के आई ऊपर खाली होगी। इसको अरहट डोर कहते हैं, अरहट का कुआ लोई, अरहट का कुआ। ये अरहट का कुआ लोई, यागल बंजा है सब कोई, ये चीटी, ओह चीटी कीड़ी, कीड़ी कुंजर, कुंजर माने हाथी, कीड़ी कुंजर और अवतारा, हर हट डोर बंधे कई बारा। ये अवतार ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा विष्णु और शिव, ये भी जन्म मृत्यु में आते हैं और कहते हैं नीचे अपने कमाई से नीचे आए, यहां से साधना की ऊपर चले गए और यहां मर गए, यहां खत्म हुए, फिर खाली बाजते आए, फिर यहां साधना की फिर ऊपर गए, यानी यहां यहां चले गए, यहां मृत्यु हुई, फिर नीचे आए, फिर साधना की, ये खाली हुए फिर भर के गए। तो ऐसे ये जन्म मृत्यु का रहट का कुआ चलता रहा। इसके लिए बताते हैं कि ये अरहट का कुआ लोई इस काल के लोक में जन्म मृत्यु सबकी है। ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु होती है, काल और दुर्गा की भी मृत्यु होती है, ये अक्षर पुरुष की भी मृत्यु होती है, लेकिन परम अक्षर पुरुष यानी परमेश्वर सतलोक सतपुरुष के स्वामी की, सतपुरुष की कभी मृत्यु नहीं होती, वो अविनाशी परमात्मा है। अब क्या बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया, कहिए इन पांचों मिल पर पंस बनाया, वाणी हमारी लहिए। क्या बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर और माया और युकाल, इन पांचवा ने मिलकर तुम्हें यहां फंसा रखा है और तुम हम जो कह रहे हैं इनको ले लो, इन वचनों को लेना माने बड़ी सावधानी से गौर करके सुनना और उस पर असर करना। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और